किसी ने विधिवत वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का अनुष्ठान किया। वर्णाश्रम धर्म का शास्त्र में जैसा लिखा है ठीक उसी विधि से पालन किया और भगवान के पवित्र नाम में अनुराग नहीं हुआ, भगवान के रूप में अनुराग नहीं हुआ, भगवान की कथा में अनुराग नहीं हुआ, तो उसका किया गया धर्म का आचरण व्यास जी कह रहे हैं श्रम एव ही केवलम, उसका किया गया धर्म का आचरण श्रम है। महाराज इतना ही नहीं, बड़े से बड़ा योगी और बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी से तात्पर्य यही आप लोग समझना यहां जो हम कहना चाहते हैं, जिसने शब्द शास्त्र को जान लिया है, पोथियों को पढ़ लिया है, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है, ऐसा शब्द ज्ञान संपन्न व्यक्ति यदि उसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है तो उसका वेदांत का कथन श्रवण मनन पठन आदि भी उस जीव का कल्याण करने वाला सिद्ध नहीं होगा। श्रेयः श्रुतिम् भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषार धातीनाम। ब्रह्मा जी का वाक्य है भागवत दसम स्कंद में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कल्याण का मूल उद्गम भक्ति है। कल्याण कहां से उत्पन्न होता है, कल्याण का मूल स्रोत क्या है, बोले भक्ति है। और उस भक्ति की महिमा को ठुकरा करके जो लोग मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए आत्म ज्ञान हो जाए ऐसा संकल्प करके शास्त्रों में श्रम करते हैं अथवा अनेक प्रकार के कठोर साधन करते हैं, यदि भक्ति को त्याग कर वे साधन करते हैं अथवा शास्त्राध्ययन करते हैं तो वह क्रिया उनकी उस प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति धान की भूसी को कूटने लग जाए। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषाविघातनम्। स्थूल तुष्माने होता धान की भूसी, धान की भूसी को मूसर से कूटने लग जाए, कूटते 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 बहुत दीर्घ काल तक भी कूटता रहे तो भी धान की भूसी से चावल मिलने वाला नहीं है। ऐसी भैया सार तो भगवान की भक्ति है। और भक्ति क्या है, मणि। भक्ति क्या है, मणि। राम भगति मणि उर्वस जाके दुख लवलेश न सपने काके। और मणि क्या है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भी करवाइर जो चासी उजियार। तो भक्ति को मणि कहा और राम नाम को भी मणि कहा, इसका मतलब भगवान नाम रूपी भक्ति ही मणि है, नाम ही मणि। भगवान नाम को छोड़कर इस कलिकाल में दूसरी गति इसलिए नहीं है कि नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वे सारे के सारे साधन दोषयुक्त हो चुके, सब में मिलावट आ गई, आदमी तक में मिलावट आ गई, संकरता आ गई, पशुओं में पक्षियों में वनस्पतियों में सब चीज में मिलावट आ गई। कहां तक कहें महाराज, कथा में भी बहुत मिलावट आ गई, कथा में भी मिलावट आ गई। हमारे महाराज जी कई बार विनोद में कहते थे कथा कैसी विकृत भई है, बोले पहले आप कथा, आप कथा माने मैं वहां गया था कलकत्ता बंबई और कहां कहां की घटना, आप कथा, फिर बाप कथा, हमारे पिताजी ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे, परदादाजी ऐसे थे, पर लोक व्यथा आजकल ऐसा हो रहा लोक व्यथा। और फिर यदि समय बच जाए तो राम कथा कृष्ण कथा कैसे कल्याण हो। सारी व्यथा को दूर करने वाली तो कथा है, और कथा जब मनोरंजन बन जाती है तो फिर कल्याण जीव का कैसे। यह कथा कीर्तन आत्मरंजन के साधन है। मनोरंजन के लिए तो बहुत चीजें दुनिया के, उनसे मनोरंजन करो आत्मरंजन। इसलिए भैया भक्ति की महिमा को हृदय से स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं है। ज्ञान का फल क्या है? कृते ज्ञानान्ना मुक्ति, ज्ञान का फल मुक्ति है। और व्यास जी कह रहे हैं मुक्ति क्या है और भक्ति क्या है, बोले भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति उनकी दासी है। पद्म पुराण में लिखा है, अपने मन से हम नहीं बोले, मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम। भगवान ने भक्ति महारानी की सेवा में एक दासी रख छोड़ी, वो दासी का नाम है मुक्ति। इसका मतलब है भक्ति करने वाले की ही मुक्ति होती है। भगवान आदि शंकराचार्य भी इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं, मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। ये आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि अब तुम लोग ब्राह्मण तो हो ही हो, कर्मकांडी भी हो, पर भजन नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं। अब भगवत शरणागत होकर राम नाम का जप करो, रोज कीर्तन भी घर में किया करो। अब तो सबने स्वीकार कर लिया, और अब इतने बड़े काशी के वैदिक कर्मकांडी अग्निहोत्री ब्राह्मण वे सबके देखते देखते मर गए थे और फिर जीवित हो गए। अब और अधिक महिमा गोस्वामी जी महाराज की बढ़ गई, और महाराज गोस्वामी जी की अत्यधिक महिमा बढ़ी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहे जो कुछ उनके सामने आ जाए, देखने को मिल जाए, पर उनकी वृत्ति ऐसी होती है कि वो कहते नहीं 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 अभी कुछ नहीं। द्वेष जब चित्त में होता है तो फिर वह किसी भी स्थिति में जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है उसकी महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहता। अब तो काशी के कुछ ऐसे विद्वान भी थे जो घोर वाम मार्गी थे, उनकी तामसी उपासनाएं थी, पंचमकार का सेवन करने वाले। अब पंचमकार की हम व्याख्या नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है। उनका सेवन करने वाले लोग, उन्होंने कहा भैया ये पोथी तो वस्तुतः बड़ी खतरनाक है, जो लोग इस पोथी को पढ़ेंगे उनका आचार विचार व्यवहार सब शुद्ध हो जाएगा, तो हम अशुद्ध लोगों के पास गोली गंडा भूत प्रेत और इन सब के लिए लोग कैसे हमारे पास आएंगे, हम सबकी तो दुकानदारी ठप हो जाएगी। तब उन्होंने एक बटेश्वर मिश्र, काशी के एक बहुत बड़े पंडित थे, पंडित बटेश्वर मिश्र, वे काशी के बहुत बड़े तांत्रिक थे उस समय के, उनके पास आए। बोले आप मारण का प्रयोग करो, उच्चाटन का प्रयोग करो, तुलसीदास जी यहां से भाग जाएं, काशी में न रहें। बटेश्वर मिश्र ने कहा कि भाई देखो बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं और मुझे भी भय लग रहा है तुलसीदास जी से टकराने में, तुम लोग इतने पीछे क्यों पड़ गए। बोले महाराज आप ही हम सब के मुखिया हो, और अभी समय रहते हुए अंकुश नहीं लगाया गया तो हम लोगों को काशी छोड़ के भागना पड़ेगा, इसलिए कैसे भी इनको निकाला जाए, इनके ऊपर मारण का प्रयोग किया जाए। अरे मारण ना हो तो कम से कम उच्चाटन तो हो जाए, यहां से भाग जाए। बटेश्वर मिश्र ने बहुत मना किया कि ऐसा हम नहीं करेंगे, पर लोगों के आग्रह को देखकर उनके मन में भी आ गया, क्योंकि मात्सर्य दोष उनमें भी था। तब उन्होंने भैरव जी का अनुष्ठान किया और भैरव जी प्रकट हो गए मंत्र शक्ति से, मंत्राधीनास्य देवता, ऐसा पूरा श्लोक है। तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम, और मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा जगत दैव के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, काल भैरव प्रकट हो गए और काल भैरव ने कहा कि देखो बटेश्वर मिश्र, तुम मंत्र शक्ति से प्रेरित करके हमको वहां भेज रहे हो, जाना तो हमको पड़ेगा लेकिन इतना समझ लो कि उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा ही बिगड़ जाएगा। क्यों? बोले आज तक भगवत भक्तों का कभी अनिष्ट हुआ ही नहीं, जब अनिष्ट हुआ ही नहीं, उनके रक्षक भगवान हैं, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते भक्तों का। कई बात भी समझाई काल भैरव जी ने, पर बटेश्वर माना नहीं, बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और जैसे ही अस्सी घाट पर बटेश्वर मिश्र पहुंचे ना, हाँ नहीं बटेश्वर मिश्र का, बटेश्वर मिश्र तो प्रयोग ही कर रहे थे काल भैरव जी, जैसे ही वहां पहुंचे तो अब देखो ये लीला है भगवान की। हनुमान जी पहले से रक्षा में नियुक्त हैं, सुदर्शन चक्र हुए, हनुमान जी हुए, ये सब रक्षा करते भगवान की भक्तों की। हनुमान जी वहां खड़े हुए थे, श्री हनुमान जी महाराज ने ललकार दिया काल भैरव जी को, समझ लो हाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। काल भैरव जी का बस नहीं चला, काल भैरव जी लौट गए और लौट करके उन्होंने उठाकर बटेश्वर मिश्र को पटका और बटेश्वर मिश्र के प्राण पखेरु उड़ गए। काल भैरव जी को भेजा था गोस्वामी जी का काल बनने के लिए और बटेश्वर मिश्र ही चले गए, पधार गए। अब तांत्रिकों का भी हौसला पस्त हो गया, बोले अब तो भैया हैं, देखो भगवान मथुरा पधारे और कंस ने तैयारी कर रखी थी, अखाड़े में ठाकुर जी उतरे, सल तो सल मुष्टिक चाणूर, कंस के पहलवान भी आ गए। चाणूर बोला महाराज हमसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। भगवान बोले बालाह वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम्, हम बालक हैं, हमारे समान आयु वाले बल वाले बालक को हमसे लड़ा दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कहां तुम विश्व विजयी पहलवान, कहां हम छोटे छोटे 10-11 साल के बालक, हमारा तुम्हारा युद्ध तो अधर्म पूर्ण होगा, धर्मयुक्त नहीं होगा। चाणूर बोला न बालो न कुशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः दील एवो हतो येन सहस्रत द्विपसत्वृत, ना तो तुम बालक हो और ना ही तुम किशोर हो, अभी अभी हजारों हाथियों का बल जिसमें था उस कुवलयापीठ को एक घूंसे से मार के आ रहे हो और कह रहे हो कि हम बालक हैं। भगवान बोले अच्छा इसका मतलब तुम लड़ना ही चाहते हो, लड़ लो। सब दाव पेच भगवान ने दिखाए और अंत में चाणूर के पैर पकड़े, 100 बार घुमाया आकाश में, ऐसे पटका तो उसके शरीर का इतना टुकड़ा तक नहीं बचा। कहां थे, कहां गया चाणूर का पर्वताकार विशाल शरीर, पता ही ना चला। सल तो सल मुष्टिक चाणूर जब चारों खाने चित्त हो गए, सब वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अब और भी कंस के पहलवान थे वो सब भगे वहां से, जो दूध जलेबी खाने आए थे वो सब वहां से भगे, कोई लघु शंका के बहाने कोई दीर्घ शंका के बहाने सब भाग गए। जब हमारे उस्ताद ही मारे गए तो हम प्राण देने यहां काहे को खड़े रहे, वो सब भाग गए। स्वामी जी ठीक यही बात भाई, बटेश्वर मिश्र के मरने के बाद काशी के तांत्रिकों में खलबली मच गई, बोले भैया तुलसीदास जी सामने पड़े तो सीताराम बोल देना, अब उनसे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये बात पक्की हो गई। पर अब कुछ पंडितों ने फिर कहा, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते कि काशी में जहां देखो तो हिंदी ग्रंथ का पाठ हो, काशी विद्वानों की नगरी है, फिर संस्कृत उस ग्रंथों को कोई पढ़ेगा ही नहीं, तब रामचरितमानस पढ़ने लग गए तब क्या होगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तब कैसे मानोगे? बोले देखो, काशी के इस समय के सबसे बड़े विद्वान हैं श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, भगवान आदि शंकराचार्य की पवित्र परंपरा के वे दंडी स्वामी हैं, और उनको अद्वैत मार्तंड कहा जाता था। अद्वैत सिद्धांत का तो सूर्य ही माना जाता था उस काल में। वे जितने उच्च कोटि के भगवान के ज्ञानी भक्त थे, ज्ञानी थे, उतने ही उच्च कोटि के वे प्रेमी अनुरागी भक्त थे। ये विशेष बात है, वे ही मधुसूदन पाद सरस्वती विचरण करते हुए जब वृंदावन आए, श्री यमुना जी में स्नान किया और केसी घाट पर बैठ करके प्रणव का जप कर रहे थे। काय का जप कर रहे थे? ओंकार का जप कर रहे थे, प्रणव का जप कर रहे थे। और वे अद्वैत वेदांत में उनकी ऐसी निष्ठा थी कि वे नाम रूप की उपासना से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, दूर रहने वाले थे। हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि ये सगुण तो मायोपाधिक है, पर एक विरक्त की रहनी से रहते रहते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग के अभ्यास से श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये जो प्रस्थानत्रयी है, इसके बारंबार अनुशीलन से उनका चित्त इतना निर्मल हो चुका था कि उनके चित्त को देखकर हमारे चित्तचोर वृंदावन बिहारी के मन में लालच आ गया। बोले रे, बोले बाबा जी तो बहुत अच्छा है, इसका हृदय बड़ा दिव्य है, हैं? पर ये हमारी रूप माधुरी की ओर आकृष्ट नहीं है, हैं? सगुण स्वरूप में इसकी निष्ठा नहीं है, कैसे जगेगी? बोले हम सामने आ जाएं तो सब भूल जाएगा। वो तो ओम 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 जप रहे थे, और तब तक हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने किसी कुंज के झुरमुट में खड़े होकर अपने अधर पर बांसुरी पधरा करके बजाई। आहा, क्या कहना, हमने स्वामी जी के मुख से सुना है, बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन भाए गई। बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन। रोक्यो यमुना को जल चंदा हु न चाल है, रोक्यो यमुना, याद नहीं हमको, चंदा हु न चाल है, केसोरी रंगीलो चेला मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, केसोरी रंगीलो चेला मदन गोपाल। ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि शंभू छूट गई, जहाँ ये दशा है वहां जब शंकर जी की ही समाधि छूट जाती है, ब्रह्मा जी का ध्यान छूट जाता है, यमुना जी की धारा रुक जाती है, चंद्रमा स्थिर हो जाता है, वहां मधुसूदन पाद सरस्वती जी की क्या दशा भई होगी, इसको हम क्या कहें। उनका ध्यान छूट गया और जैसी उन्होंने नेत्र खोले, वाह, त्रिभंग ललित मुरली मनोहर श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, जो कह रहे थे कि उस निर्विशेष निर्गुण निराकार निश्चल निरंजन निर्विकल्प विशुद्ध ब्रह्म से बढ़कर के कोई दूसरा तत्व नहीं है, जो अब तक ये घोषणा करते थे, वे मधुसूदन पाद सरस्वती सहसा बोल पड़े, बंसी विभूषित करान नवनीर दाभार पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा।
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि।
श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता।
बंसी विभूषित करा,
जिनके करकमल में बंसी है। नवीन सजल मेघ के समान, जिनकी अंग कांति है। पीतांबर धारण किए हुए, लाल लाल बिंबा फर के समान, जिनके अधरोष्ठ उत्तरोष्ठ है। पूर्णेन्दु सुंदर मुख है, पूर्ण चंद्रानन है। ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर के दूसरा कोई तत्व नहीं है। ऐसा है ऐसा मैं नहीं जानता हूं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। अर्थात श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। अब निर्विशेष और सविशेष की बात भी हम करी रहे। देखो एक विशेष बात हम निवेदन कर रहे हैं, निर्विशेष कुछ है ही नहीं। आप लोग कहेंगे कैसे? निर्विशेष माने क्या होता है? विशेषण से रहित, यही अर्थ होता ना निर्विशेष का। विशेष से रहित निर्विशेष। अरे विशेष से रहित होना भी तो एक विशेषता है। निर्विशेष होना अपने आप में एक बड़ी विशेषता है कि नहीं? निर्विशेष होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब आप बताइए, निर्विशेष भी सविशेष हुआ कि नहीं? तो निर्विशेष भी अपने आप में सविशेष है, एक बात। दूसरी बात यह है, साकार और निराकार शब्द का अर्थ क्या होता है? सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? हम शब्द के अर्थ को ठीक से समझ लें तो फिर सारी समस्या का समाधान होगा। सगुण माने क्या है? गुणे, गुणों के जो सहित हो उसको सगुण कहते हैं। गुणों के सहित, गुण माने प्रकृति के गुण, माया के गुण। माया के गुणों से युक्त होने के कारण भगवान को सगुण कहा गया। बोलिए, कोई भी बतावे इस बात को कि माया के गुणों से युक्त होने के कारण क्या भगवान को सगुण कहा गया? माया के गुण यदि भगवान में होंगे तो वे माया के अधीश्वर, माया के पति कैसे सिद्ध होंगे? माया उनकी दासी कैसे सिद्ध होगी? ये तो माया के नियामक हैं, माया उनके द्वारा नियाम्य है। इसलिए सगुण शब्द का अर्थ प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं होता। सगुण शब्द का अर्थ है जो दिव्य अप्राकृत भक्त वात्सल्यादि गुण हैं, उनसे युक्त भगवान को सगुण कहा जाता है। सत्व रज तम माया के गुण भगवान में नहीं है। भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दीन बंधुत्व आदि आदि जो भगवान के असंख्य अचिंत्य मंगल कल्याणकारी गुणगण हैं, उनका समुद्र होने के कारण भगवान को सगुण कहा जाता है। और निर्गुण क्यों कहा जाता है? निर्गुण माने गुणहीन, गुण ही नहीं है। अरे निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि उनमें प्रकृति के गुण नहीं है। अब प्रकृति के गुण नहीं है इसीलिए सगुण कहा जाता है, अब प्रकृति के गुण नहीं है इसलिए निर्गुण कहा जाता है। पर सगुण शब्द का अर्थ होता है, परिष्कृत अर्थ क्या हुआ सगुण शब्द का? मायिक गुण रहित अमायिक गुणगण विशिष्ट, ये सगुण शब्द का अर्थ। मायिक गुणों से जो रहित हैं और अमायिक गुणों से युक्त हैं, भक्त वात्सल्यादि दिव्य गुणगणों से जो अलंकृत हैं, वो सगुण हुए। और निर्गुण माने क्या हुआ? निर्गुण माने मायिक गुण रहित और अमायिक गुण विशिष्ट, निर्गुण शब्द का भी अर्थ। इसलिए भगवान दो है ही नहीं कि सगुण अलग है और निर्गुण अलग है, वे ही सगुण हैं और वे ही निर्गुण हैं। इस सिद्धांत को महाराष्ट्र के संतों ने तो एक साथ स्वीकार किया। उनके काव्य में, उनके अभंगों में, उनकी वाणी में सगुण निर्गुण का भेद बिल्कुल नहीं मिलता। वो सगुण की स्तुति कर रहे हैं और निर्गुण के विशेषण दे रहे हैं। भेद है ही नहीं भैया, परमात्मा दशमांश हो जाएंगे। पर बुद्धि में ऐसी कल्पना लोगों के घुस जाती है, जिसमें गुण नहीं है वो निर्गुण हो गया, जिसमें गुण है वो सगुण हो गया। अरे भैया, निर्गुण माने होता माया के गुणों से रहित और सगुण माने होता है माया के गुणों से रहे, दोनों ही एक बात। अब निराकार साकार का अर्थ क्या है? आकार माने जिसका आकार नहीं, भगवान का श्री अंग पंचभूत से निर्मित नहीं है, सात धातुओं से बना हुआ नहीं है, सप्त धातु विनिर्मित पंचभूत निर्मित भगवान का शरीर नहीं है, चिदानंदमय देह तुम्हारी सच्चिदानंद घन होने के कारण उन्हें कहा जाता है निराकार। सच्चिदानंद घन विग्रह होने के कारण उनको निराकार कहा जाता है, आकार ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। निराकार माने प्रकृति के आकार से रहित, पांच भौतिक आकार से रहित, और साकार माने सच्चिदानंद आकार वाले, सच्चिदानंद घन। तो अब बताओ साकार निराकार दो हुए, प्रकृति के आकार से रहित होने के कारण उन्हीं रामकृष्ण नारायण को निराकार कहा जाता है, और सच्चिदानंद घन स्वरूप वाले होने के कारण उन्हीं को साकार कहा जाता है। माया के गुणों से रहित होने के कारण उन्हीं हमारे रामकृष्ण नारायण को निर्गुण कहा जाता है, और भक्त वात्सल्यादि दिव्य गुणों के कारण उन्हीं को सगुण कहा जाता है। पर लोग इसी झगड़ा में पड़े और एक तरफा घोषणा कर देते हैं कबीर जी निर्गुण धारा के कवि थे, वो सगुण धारा के थे, उन्हें यही पता नहीं निर्गुण सगुण माने क्या, और पढ़ने वाले लोग उनको संस्कृत का उतना ज्ञान है नहीं, वे ठीक से दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करते नहीं, तो उनको उनकी बुद्धि में दो भगवान हो जाते हैं, एक सगुण एक निर्गुण भगवान बन एक। इसलिए भैया अपने मन में, हाँ कई बार यह अज्ञान भीतर घुसा रह जाता है, तब ठाकुर जी ही इस अज्ञान को दूर करते हैं। एक बात हम बड़ी मार्मिक और प्रसंगवश कहना चाहते हैं, सेठ श्री जयदयाल गोविंद का जी जो इस भारतवर्ष की पवित्र धरती के एक श्रेष्ठतम महापुरुष के रूप में प्रकट हुए थे, वे महापुरुष उनके प्रारंभिक जीवन के साधना काल में सगुण स्वरूप के प्रति, भगवान के मंगलमय आकार के प्रति उनका कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वे भगवान का ध्यान तो करते थे, जो भगवान का विभू रूप है, व्यापक रूप है, उसका ध्यान करते थे, लेकिन भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, और जब चतुर्भुज रूप का दर्शन पूज्य सेठ जी को प्रदान किया, तो एक जगह सेठ जी ने लिखा है, बोले भगवान ने अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन करा के मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, नहीं तो हमारी बुद्धि में भी ये बात बनी रह जाती कि ना निराकार और साकार अलग अलग है, ये बात रह जाती, लेकिन भगवान का दर्शन होते ही ये भाव बिल्कुल मिट गया कि साकार निराकार दो हैं, वो दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही हैं, ये बात समझ में आ गई, दोनों एक ही बिल्कुल भेद दोनों एक ही है। तो श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं, वे बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी, और भगवान ने मुरली मनोहर स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया है, वे महान प्रेमी अनुरागी भक्त। पर काशी के विद्वानों में इस बात का पता नहीं था कि मधुसूदन पाद सरस्वती जी को तो सोचते थे कोरे वेदांती हैं, ये भक्त नहीं हैं, और ये जब इस पोथी को देखेंगे तो कहेंगे ये तो बाबा बैरागियों की वैष्णवों की पोथी है, इसमें हमारे सिद्धांत के लिए क्या है, कहीं कुछ नहीं है, तो वे निश्चित इसका खंडन करेंगे, और जब वे खंडन कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो उन पंडितों ने जाकर के श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी से कहा, महाराज आपके रहते हुए काशी में घोर अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है? बोले एक तुलसीदास जी नामक संत, उन्होंने रामचरितमानस की पोथी का निर्माण किया है, धीरे धीरे जनमानस में उसकी बड़ी ख्याति होती चली जा रही है, भाषा ग्रंथ का इतना प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो फिर आपके उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को, वेदांत को पूछेगा कौन? अब आपका यह कर्तव्य बनता है, आप बड़े विद्वान हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसका खंडन कीजिए। ऐसा होता है, विद्वानों को लोग प्रेरित करते हैं, आप खंडन लिखिए। मत्सूदन पाद सरस्वती जी ने कहा कि बिना कृति को आद्योपांत देखे हम खंडन नहीं कर सकते। अरे पहले ग्रंथ हमको देखने के लिए तो मिले, तब हम विचार करेंगे, तब अपनी सम्मति उस पर देंगे। यदि वर्णाश्रम के विरोध में, सनातन धर्म के सिद्धांतों के विरोध में उस पुस्तक में एक वाक्य भी आया है तो हम आप लोगों का पक्ष लेंगे, उसका खंडन करेंगे, पर पहले ग्रंथ लाओ। पंडितों ने कहा वो तो उपलब्ध करा लिया जाए। तो प्रतिलिपियां काशी में कई तैयार हो चुकी थी, एक प्रतिलिपि मधुसूदन पाद सरस्वती को देखने के लिए दी गई। अब ध्यान से सुने, मधुसूदन पाद सरस्वती जी इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, बहुत भाव और श्रद्धा पूर्वक नहीं देख रहे हैं, वो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि इसमें हमें दोषान्वेषण करना है। वो तो इसलिए पोथी को देख रहे हैं कि वह स्थल इसमें हम देखना चाहते हैं जो वैदिक सिद्धांत से विरोध रखता हो। उस सिद्धांत प्रूफ देखने वाले लोग प्रूफ देखते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, वो क्या, वो शुद्ध नहीं पढ़ते हैं, शुद्धि पर ध्यान उनका नहीं जाता, अशुद्धि पर ज्यादा ध्यान जाता है। और जिन्हें प्रूफ रीडिंग का अभ्यास नहीं होता वो अशुद्ध को भी शुद्ध पढ़ के आगे चले जाते हैं। तो जब कोई पुस्तक जांचना हो तो दोषान्वेषण करना पड़ता है, दोष देखना पड़ता है। मधुसूदन पाद सरस्वती इसलिए कलम लेकर बैठे थे कि जो शास्त्र विरुद्ध वाक्य होगा उसको हम रेखांकित करेंगे और फिर उस पर शास्त्रार्थ होगा। लेकिन आश्चर्य है, वे जब उन्होंने उस ग्रंथ को पूरे को पढ़ा, मनोयोग से पढ़ा, तो उनका मन मयूर नृत्य करने लग गया। उन्होंने मन में विचार किया कि सनातन धर्म का इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं हो सकता है। सारे सिद्धांत को इन्होंने कह दिया, और जैसे महाभारत किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, भागवत और वाल्मीकि किसी एक संप्रदाय के ग्रंथ नहीं है, ऐसे ही यह किसी एक वर्ग एक समुदाय का ग्रंथ नहीं है, गीता जी किसी एक संप्रदाय मात्र का नहीं है, वो तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ऐसे ही रामचरितमानस तो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। ये बात उन्होंने निश्चित किया और उन्होंने पोथी के ऊपर एक श्लोक लिख दिया। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको प्रायः कंठस्थ ही होगा। क्या लिखा है श्लोक में?
आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता।
अस्मिन् आनंद कानने, इस आनंद कानन, आनंद वन कहते हैं काशी को, इस आनंद वन भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी की नगरी काशी में जंगमह तुलसी तरु, एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा तो एक जगह रहता है, पर यह तुलसी ऐसा है, चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और इस तुलसीदास जी को ही तुलसी का वृक्ष बताया, और रामचरितमानस की चौपाई क्या है, तुलसीदास जी का काव्य क्या है, कहते कविता मंजरी भाति, इस तुलसी की मंजरी पुष्प क्या है, बोले इन तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और महाराज ये ऐसी मंजरी है कि राम रूपी भौंरा इस पर मड़ला रहा है। राम भ्रमर भूषिता, पंडितों को सबको बुलाया, बोले हमने ये इस पर अपनी सहमति लिखी है। महाराज जितने पंडित थे वो सब लज्जित हो गए, और श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा कि इस ग्रंथ का मैं भी उपासक हो गया, समर्थक हो गया, एक शब्द एक अक्षर भी इसमें शास्त्र विरुद्ध नहीं, सब कुछ शास्त्र सम्मत है। और अब तो पालकी उन्होंने मंगवाई और उस पालकी पर छड़ी छत्र लगाकर चमर के सहित जय जयकार करते हुए गोस्वामी जी की कृति की शोभा यात्रा और निकलवाई। बोलो वृंदावन बिहारी। इस प्रकार से यह निश्चय किया गया। अब अंतिम जिसको कहना चाहिए ब्रह्मास्त्र, अब ब्राह्मणों ने कहा कि है तो कुछ चमत्कार जरूर तुलसीदास जी ने, लगता है कोई ऐसा तंत्र मंत्र सिद्ध कर लिया है कि जिसके पास जाते वही थोड़े दिनों में इन्हीं के अनुकूल हो जाता है, विरोधी भी कम होते चले जा रहे। पर कुछ ऐसे अनन्य विरोधी थे, कट्टर, बोले नहीं हम बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते, कुछ ऐसे भी थे। तो उन्होंने कहा कि अब एक उपाय है। क्या? बोले उपाय ये है कि वेदादि सभी शास्त्रों को, छह अंगों के सहित वेद को, पुराणों को, उपपुराणों को, इतिहास को, सारे ग्रंथों को विश्वनाथ जी के मंदिर में रखा जाए और रामचरितमानस की पोथी को सबसे नीचे रखा जाए और ये शर्त रखी जाए कि ठाकुर कृष्णा जी के शयन के समय मंदिर में ये सब पधराए जाएंगे। अब यदि भाषा ग्रंथ की महिमा विश्वनाथ जी स्वीकार करते हैं तो ये संस्कृत ग्रंथों के ऊपर इस पुस्तक को आना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने निश्चय कर लिया। और अब काशी की भीड़ जब मंगला दर्शन के लिए उमड़ी तो भोले बाबा स्वयं ही आज्ञा देकर लिखवा रहे हैं, तो उसको उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम भी उन्हीं का ही है। तो भोले बाबा ने विचित्र लीला की, सारे शास्त्र तो नीचे थे और सबके ऊपर मानस जी की पोथी रखी गई थी। वह आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे।
राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम।
अब तो सब गोस्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और इसके बाद फिर किसी विद्वान ने कभी मानस जी का विरोध नहीं किया। आज सब जितने जो बचे खुचे विरोधी थे वो भी अब पक्के समर्थक हो गए। पर एक बात तो गोस्वामी जी से पूछ ही दिया, बोले भोले बाबा तो आपके हाथों बिक गए हैं और जब यहाँ के भोले बाबा ही आपके ऊपर इतने द्रवित हो गए हैं तो अब आपके विरोध करने की, आपकी कृति का विरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? बस अब हमारी प्रार्थना यह है, हमारी जिज्ञासा का समाधान कर दो। क्या? बोले भाई ये वैदिक सिद्धांत ही इसमें है लेकिन आखिर है तो हिंदी भाषा का ग्रंथ, ये ऊपर क्यों आ गया? हाँ ऐसा होता वो अलग निकल करके अलग विराजमान हो जाता, पर वेद के ऊपर ये कैसे आ गया, इसका क्या रहस्य? भोले बाबा ने ऐसा क्यों किया? तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने इसका उत्तर दिया और ये दोहे गोस्वामी जी के दोहावली नामक उनकी कृति में है। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया,
भाषा शाखा है सही,
भाषा शाखा है सही,
सुरबाणी है मूल, भाषा शाखा है सही, सुरबाणी है मूल, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल।
इसलिए बोले मूल तो सदा जमीन में ही रहता है, वेद न हो तो रामचरितमानस कहां से आवे, इसलिए वेद की महिमा तो स्वीकार्य है किंतु भैया वेद भगवान जड़ हैं तो भाषा रूपी शाखा की डाली में लगा हुआ फल फूल श्री रामचरितमानस है। भाषा शाखा है सही, सुरबाणी है मूल, मूल धूल में रहत है शाखा में फल फूल। आगे के दोहा में कह रहे हैं, का भाषा का संस्कृत, का भाषा का, ध्यान से सुने, इसमें आप ऐसा नहीं समझना कि हम संस्कृत भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। संस्कृत तो हमारी परम आराध्या है, हम उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। संस्कृत की उपेक्षा करने वाला, संस्कृति की उपेक्षा करने वाला मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। संस्कृत की उपेक्षा नहीं, एक सिद्धांत है, नहीं निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। निंद्य की निंदा में तात्पर्य नहीं होता, विधेय की स्तुति में तात्पर्य होता है। या निंदा में तात्पर्य नहीं है, या विधेय है भाषा ग्रंथ रामचरितमानस की महिमा का गान, ये विधेय है, इसलिए इसमें इसका तात्पर्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, काम जो आवे कामरी, काले करिय कुमाच, काम जो आवे कामरी, काले करिय कुमाच, मणि भाजन विष पारई, पूरन अभी निहार का छाड़िय का संग्रिय, कहु विवेक विचार। काशी में एक घटना ऐसी और हुई थी, आप लोग इसी गीता वाटिका में सुन चुके हैं। रैदास जी की पूजा पद्धति पर काशी में बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह उठा और काशी नरेश से कह दिया गया कि ये बहुत गलत करता है, इसको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं, इसका जन्म चर्मकार कुल में हुआ है। रैदास जी का कहना ये था कि हम आपके वैदिक शौचाचार की मर्यादा का कहीं भी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वैदिक पद्धति से जहां आपके मंदिरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है वहां कोई जाकर हम आपकी शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण कर नहीं रहे हैं, अपने घर में शिला को भगवत रूप मानकर पूजा करते हैं और भगवान नाम जप करते हैं, तो इसमें कौन सी बाधा है।